सामाजिक अवस्था का महत्व। पुस्तकों में लिखी बातों से हम समाज की एक विशेष प्रकार की चिंताधारा का परिचय पा सकते हैं। इस कार्य को जो लोग हाथ में लेंगे उनमें प्रचुर कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी। भारतीय समाज जैसा आज है वैसा हमेशा नहीं था। नए नए जनसमूह इस विशाल देश में बराबर आते रहे हैं और अपने विचारों और आचारों का कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते गए हैं। पुरानी समाज व्यवस्था भी सदा एक सी नहीं रही है। आज जो जातियां समाज के सबसे निचले स्तर में विद्यमान हैं, वे सदा वही नहीं रही और न वे सभी सदा ऊंचे स्तर पे ही रही जो आज ऊंची हैं। इस विराट जन समूह का सामाजिक जीवन बहुत स्थितिशील है, फिर भी ऐसी धाराएं इसमें एकदम कम नहीं है जिन्होंने उसकी सह को आलोड़ित विलोड़ित किया। एक ऐसा भी जमाना गया है जब इस देश का एक बहुत बड़ा जन समाज ब्राह्मण धर्म को नहीं मानता था। उसकी अपनी पौराणिक परंपरा थी, अपनी समाज व्यवस्था थी, अपनी लोक पर लोक भावना भी थी। मुसलमानों ने आने से पहले ये जातियां हिंदू नहीं कही जाती थी। कोई भी जाति तब हिंदू नहीं कही जाती थी। मुसलमानों ने ही इस देश के रहने वाले को पहले पहल हिंदू नाम दिया। किसी अज्ञात सामाजिक दबाव के कारण इनमें भी बहुत सी अल्पसंख्यक पौराणिक मत की जातियां या तो हिंदू होने को बाध्य हुई या मुसलमान। इस काल की एक विशेष घटना है जब प्रत्येक मानव समूह को किसी न किसी बड़े दल में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। उत्तरी पंजाब से लेकर बंगाल के ढाका कमिश्नरी तक एक अर्ध चंद्राकृति भूभाग में जुलाहों को देखकर रिजली साहब ने अपनी पुस्तक पीपल्स ऑफ इंडिया पृष्ठ 126 में लिखा है कि इन्होंने कभी समूह रूप में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। कबीर रज्जब आदि महापुरुष इस वंश के रत्न थे। वस्तुतः ही वे ना हिंदू और ना मुसलमान थे। सहजपंथी साहित्य के प्रकाशन ने एक बात को अत्यधिक स्पष्ट कर दिया। मुसलमान आगमन के अव्यवहित पूर्व काल में डोमहाड़ी या हलखोर आदि जातियां काफी संपन्न और शक्तिशाली थी। मैं यह तो नहीं कहता कि 11वीं शताब्दी के पहले वे ऊंची जातियां मानी जाती थीं, पर इतना कह सकता हूं कि वे शक्तिशाली थीं और दूसरों के मानने न मानने की उपेक्षा कर सकती थीं। निर्गुण साहित्य के अध्येता को इन जातियों की लोकोक्तियां और क्रियाकलाप जरूर जानने चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि इस अध्ययन की सामग्री ना तो एक प्रांत में सीमित है, ना एक भाषा में, ना एक काल में, ना एक जाति में और ना एक संप्रदाय में ही। व्यक्तिगत रूप में इस साहित्य के प्रतीक कवि को अलग समझने से यह सारा साहित्य अस्पष्ट और अधूरा लगता है। नाना कारण से कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो गया है। वे नाना भांति की परस्पर विरोधी परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे। जहां एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। जहां एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा। जहां एक ओर योग मार्ग निकलता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग। जहां एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े थे, वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें दिखाई दे जाते थे। यह कबीर दास का भगवद्वित सौभाग्य था। वे साहित्य को अक्षय प्राण रस से आप्लावित कर सकते थे, पर इसी को सब कुछ मानकर यदि हम चुप बैठ जाएं तो इसे भी ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे।